بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب اردو لازمی نویں اور دسویں جماعتوں کے لیے سل ٹیکسٹ بک بورڈ ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں. یہ کتاب 208 صفحات پر مشتمل ہے. یہ کتاب الصفا آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے. آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 6 سنتے ہیں. صفحہ نمبر 88 مشق. سوال نمبر 1, درج ذیل سوالات کے جواب دیجئے. الف, نام دیو کس باغ میں مالی تھا؟ بے, مصنف کو نام دیو کی کون سی حرکتوں پر تعجب ہوتا تھا؟ جیم, اس سبق میں نام دیو مالی کی کون کون سی خوبیاں بیان کی گئی ہیں؟ دال, پانی کی قلت بڑھی تو نام دیو نے کیا کیا؟ ہے, نام دیو کو بچوں کے علاج میں کیسے مہارت حاصل ہوئی؟ سوال نمبر 2, درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے. الف, نام دیو تھا 1, نمبر 1 مالی, نمبر 2 ڈرائیور, نمبر 3 چوکی دار, نمبر 4 خانسامہ. بے, ڈاکٹر صاحب کو آدمی پرکھنے میں بھی تھا؟ نمبر 1 کمال, نمبر 2 اندازہ, نمبر 3 خیال, نمبر 4 جمال. جیم, نام دیو نے سارے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا. اس جملے میں آئینہ بنانے کا مطلب ہے نمبر 1 خوبصورت بنا دینا, نمبر 2 رنگوں سے سجا دینا, نمبر 3 صاف ستھرا کر دینا, نمبر 4 نرم و نازک کر دینا. دال, ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر ہوتی ہے. نمبر 1 ناراض, نمبر 2 خوش, نمبر 3 افسردہ, نمبر 4 ملول. ہے, نام دیو غریب تھا اور تنخواہ بھی تھی. نمبر 1 زیادہ, نمبر 2 کم, نمبر 3 بہت زیادہ, نمبر 4 بہت کم. صفحہ نمبر 89, سوال نمبر 3, درج ذیل خالی جگہیں درست الفاظ سے پر کیجئے. الف, ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی ڈیش رکھی ہے. بے, گدلہ پانی پودوں کے حق میں ڈیش تھا. جیم, ڈاکٹر صاحب شاہی باغ کو حقیقت میں ڈیش بنانا چاہتے تھے. دال, باغ کے داروغہ کو خود بھی بڑے کارگزار اور ڈیش شخص ہیں. ہے, ایک سال بارش بہت ڈیش ہوئی. سوال نمبر 4, درج ذیل اقتباسات کی تشریح کیجئے. الف, کان سے سچا لگاؤ تھا اور اسی میں اس کی جیت تھی. بے, اسے کیا معلوم تھا کہ قضا اس کے سر پر کھیل رہی ہے. جیم, ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے. اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے. سوال نمبر 5, دیے ہوئے لفظی اشاروں سے کہانی مکمل کیجئے. شخص, پیٹ میں درد, حکیم, برداشت سے باہر, غذا, چیک کرنا, پوچھنا, جلی ہوئی روٹی, آنکھیں, دوا, علاج, شرمندگی, آئندہ, نتیجہ. سرگرمی, طلبہ شجرکاری کی اہمیت پر تقریری مقابلہ کریں. خاکہ ایک سماحی مضمون ہے جس میں کسی شخصیت کے اہم اور منفرد پہلو اس طرح اجاگر کیے جاتے ہیں کہ اس شخص کی جیتی جاگتی تصویر پڑھنے والے کے ذہن میں پیدا ہو جائے. ہدایات برائے اساتذہ. نمبر 1, ماحول کو آلودگی سے پاک رکھنے کے لیے شجرکاری کی اہمیت واضح کیجیے. نمبر 2, خاکہ نگاری کی مذکورہ تعریف کی روشنی میں طلبہ کو اس خاکے کی خوبیاں سمجھائیے. صفحہ نمبر 90, قدرت اللہ شہاب, ولادت 1917, وفات 1986. پاک و ہند کے ممتاز سرکاری افسر قدرت اللہ شہاب اردو کے مشہور ادیب, افسانہ نگار, صوفی اور دانشور تھے. آپ کے والد کا نام محمد عبداللہ تھا. آپ نے آزاد کشمیر میں سیکرٹری جنرل اور جنگ میں ڈپٹی کمشنر کے عہدوں پر کام کیا. آپ پاکستان کے گورنر جنرل غلام محمد صدر اسکندر مرزا اور صدر محمد ایوب خان کے ساتھ بطور پرائیویٹ سیکرٹری رہے. ہالینڈ میں پاکستان کے سفیر بھی رہے. پاکستان کی ادبی تنظیم رائٹرز گلڈ کے بانی اور انجمن ترقی اردو پاکستان کے اعزازی صدر بھی رہے. شہاب نامہ آپ کی آپ بیتی ہے جس میں اپنے بچپن، جوانی اور بڑھاپے کا احوال بیان کیا ہے۔ قومی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے آپ کو ستارہ پاکستان کے تمغے سے نوازا۔ آپ کی دیگر تصنیفات میں یا خدا، نفسانے، ماں جی اور سرخ فیتا مقبول کتابیں ہیں۔ صفحہ نمبر 91، ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری۔ حاصلات تعلم یہ سبق پڑھ کر طلبہ نمبر 1 روزمرہ زندگی کے تجربات یا واقعات کے حوالے سے یا دداشت یا ڈائری لکھ سکیں۔ نمبر 2 ادبی، صحافتی، دفتری اور قانونی تحریر میں فرق کر سکیں۔ نمبر 3 صحت و صفائی کے بنیادی اصولوں کے پاسداری کے لیے کسی اخبار یا ذمہ دار افسر کو خط تحریر کر سکیں۔ ایک دفعہ میں ایک طویل دورے سے واپس آ رہا تھا، ایک پرفضا مقام پر ڈسٹرکٹ بورڈ کا ڈاک بنگلہ نظر آیا۔ جی چاہا کہ گھنٹہ دو گھنٹہ یہاں قیام کیا جائے۔ ڈاک بنگلہ کھلا پڑا تھا۔ اندر گیا تو دیکھا کہ چھت غائب ہے۔ پہلے خیال آیا کہ شاید یہ اوپن ایئر تھیٹر کی طرح اوپن ایئر ڈاک بنگلہ ہو، لیکن چوکی دار نے بڑی خندہ پیشانی سے وضاحت کی کہ دراصل یہ 1950 کے سیلاب کا نتیجہ ہے۔ میں نے پوچھا کہ بھائی، سیلاب تو زمین پر آیا تھا، لیکن چھت آسمان سے کیوں گر پڑی؟ چوکی دار نے سادہ لوہی سے جواب دیا کہ صاحب، اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی۔ اس ڈاک بنگلے میں چینی کی چند پرچ پیالیاں اور کچھ رکابیاں بھی موجود تھیں۔ ان سب کی پشت پر انگریزی میں 1854 جانسن اینڈ جانسن لنڈن درج تھا۔ چینی کے بنے ہوئے یہ ظروف 100 برس پرانے تھے، لیکن ہماری تعمیر کی ہوئی ڈاک بنگلے کی چھت سیلاب کے ایک ہی ریلے سے بہ کر گر گئی تھی۔ صفحہ نمبر 92، ڈاک بنگلے کی رعایا سے مجھے ڈسٹرکٹ بورڈ کی ایک ڈسپنسری یاد آ گئی، جو ایک نہایت دور افتادہ گاؤں میں واقع ہے۔ بغیر اطلاع دیے دور دراز دیہات میں اکیلے گھومنے کا مجھے بے حد شوق ہے۔ اس طرح ایک انسان کی آنکھ ان نظاروں کا مشاہدہ کرتی ہے جو ڈپٹی کمشنر کی آنکھ کو نصیب نہیں ہوتا۔ ان دو آنکھوں میں بڑا عجیب و غریب فرق ہے۔ انسان کی آنکھ سب کچھ دیکھتی ہے، اور ڈپٹی کمشنر کی آنکھ فقط وہی دیکھنے کی عادی ہو جاتی ہے جو اسے دکھایا جائے۔ اس کے علاوہ انسان کی آنکھ عموماً سیدھی ہوتی ہے، اور ڈپٹی کمشنر کی آنکھ اپنے ٹیڑھے ترچھے زاویوں کی وجہ سے کسی قدر بھینگی ہو جاتی ہیں۔ خیر، اس دور افتادہ گاؤں میں مجھے ایک استبل نظر آیا، جو دراصل وہاں کا اسپتال تھا۔ یہاں ڈاکٹر صاحب دھوتی اور بنیان پہنے کرسی پر اکڑوں بیٹھے تھے، اور اپنے گھٹنوں پر پرچیاں رکھے نسخے لکھ لکھ کر مریضوں کو دے رہے تھے، جنہوں نے کرسی کے چاروں طرف گھیرا ڈالا ہوا تھا۔ کیا مرض ہے؟ ڈاکٹر صاحب ہر مریض سے سوال کرتے تھے۔ مریض اپنی بیساخت کے مطابق اپنے مرض کی خود تشخیص کرتا تھا، اور ڈاکٹر صاحب بڑی سرعت سے نسخہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیتے تھے۔ غالباً یہ نسخہ تعویذ کے طور پر استعمال ہوتا تھا، کیونکہ مریض نسخہ لے کر بغیر کوئی دوا مانگے وہاں سے چلا جاتا تھا۔ میری خاکی پتلون اور سفید بش شرٹ کے لحاظ سے ڈاکٹر صاحب نے مجھے اپنے سامنے ایک بینچ پر بٹھا لیا، جس پر ان کا حکا اور پاندان پڑا تھا۔ انہوں نے کئی بار مجھے دوسرے مریضوں پر ترجیح دینے کی کوشش کی، لیکن میں نے جواب دیا کہ میری تکلیف ذرا پیچیدہ قسم کی ہے، اس لیے میں سب سے آخر میں اپنا حال بیان کروں گا۔ صفحہ نمبر 93، جب مریضوں کا ہجوم ختم ہو گیا تو ڈاکٹر صاحب بڑی خیر سگالی سے میری طرف متوجہ ہوئے۔ میں نے نہایت سنجیدگی سے اپنی تکلیف بیان کی۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا، میرے دماغ میں کچھ خلل واقع ہو گیا ہے۔ مجھے بیٹھے بیٹھے وہم ہونے لگتا ہے کہ میں ضلع جھنگ کا ڈپٹی کمشنر لگ گیا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی پھرتی سے اپنی ٹانگیں کرسی سے نیچے اتار لیں، اور عینک کے ہال کے اوپر سے مجھے بڑے غور سے گھورا۔ जब उन्हें अच्छी तरह इत्मीनान हो गया कि मेरी तराश खराश और वजह कता में डिप्टी कमिश्नर की कोई अलामत मौजूद नहीं है, तो वो फिर कुर्सी पर उकड़ू बैठ गए और एक कागज़ घुटने पर रख के गालबा नुस्खा लिखने में मशगूल हो गए। मुझे यकीन है कि अगर वक्त उन्हें मोहलत देता तो वो मेरे लिए बदहजमी का इलाज तजवीज़ फरमाते, लेकिन ऐन उस वक्त गाँव के नंबरदार ने वहाँ पहुँच कर मेरे जुनून का राज फाश कर दिया। डॉक्टर साहब भी तहाशा भाग कर अपने क्वार्टर में गए और कुछ देर के बाद बनियान के ऊपर शेरवानी पहने और हाथ में स्टेथोस्कोप लेकर बरामद हुए। अब उन्होंने खालिस अफसराना अंदाज में मेरी तशरीफ़ आवरी पर अपनी खुशनूदी का इजहार फरमाया और मुझे अस्पताल का मुआयना करने की दावत दी। मैंने भी बड़ी वजादारी से डिस्पेंसरी का मुआयना किया, जिसमें टेंचर, आयोडीन, सोडा बाइकार्ब, एस्प्रिन और बड़ी बड़ी बोतलों में कई दिन के बासी पानी के अलावा और कोई दवाई मौजूद ना थी। डॉक्टर साहब ने फरमाया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में अस्पताल का बजट तो बाकायदगी के साथ साल के शुरू में मंजूर हो जाता है, लेकिन दवाइयों का स्टॉक अक्सर साल के आखिर में या बाज़ औकात अगले साल मौसूल होता है। सफ़ा नंबर 94। डॉक्टर साहब को यकीन था कि इस ताखीर का अस्पताल की हर दिल अजीज़ी या अफादियत पर हरगिज़ कोई बुरा असर नहीं पड़ता था, क्योंकि दवाइयां मौजूद हों या ना हों, मरीज़ बार हर हाल आते ही रहते थे। और फिर डॉक्टर साहब ने अपने रजिस्टर के अदाद व शुमार से मुझे ये खुशखबरी भी सुनाई कि मुतवातिर कई बरस से मरीज़ों की तादाद में खातिर हुआ इजाफा हो रहा है। डॉक्टर साहब इस मुकाम पर पूरे 9 बरस से मिसाही फरमा रहे थे। उन्हें फ़ख्र था कि इस दौरान मलेरिया के मरीज़ों में 75% पेशेश के मरीज़ों में 50% और ख़ारिश के अमराज में 45% का इजाफा हो गया था। डिस्पेंसरी का आखिरी मुआयना 1931 में हुआ था। डॉक्टर साहब ने मुझे अस्पताल का इनडोर वार्ड भी दिखाया, जिसमें गालिबन उनकी भैंस बांधी जाती थी, क्योंकि एक कोने में ताज़ा गोबर के निशान थे जिन्हें अभी अभी साफ़ किया गया था। मुआयने के बाद डॉक्टर साहब ने मुझे विजिटर्स बुक पेश की कि मैं उसमें अपनी राय का इजहार करूं। मैंने फिल बदिया अर्ज़ किया, दुनियाए तब में ये अस्पताल संगे मील की हैसियत रखता है। यहाँ पर दवाइयों की जगह नुस्खों से इलाज किया जाता है और मरीज़ों की तादाद रोज़ अफजो तरक्की पर है। अस्पताल में दाखिल होने वाले मरीज़ों के लिए भैंस के खालिस दूध का खातिर ख्वाह इंतज़ाम है, क्योंकि वार्ड में भैंस बांधने का भी अच्छा बंदोबस्त है। गोबर भी वक्त पर उठाया जाता है और मक्खियों की आमदोरफ़्त पर कोई ख़ास पाबंदी आयद नहीं है। सफ़ा नंबर 95। चंद माह बाद जब मैं दोबारा इसी डिस्पेंसरी को देखने गया तो वार्ड में डॉक्टर साहब की भैंस तो बदस्तूर बंधी हुई थी, लेकिन विजिटर्स बुक के जिस वर्ग पर मेरे पहले मुआयने की राय दर्ज थी वो गायब था। माखुजा शहाब नामा मश्क। सवाल नंबर 1। दर्ज ज़ेल सवालात के जवाब दीजिए। अलिफ, चौकीदार ने डाक बंगले की छत गायब होने की क्या वजह बयान की? बे, मुसन्निफ़ ने देहात में घूमने के शौक़ की क्या वजह बयान की है? जीम, मुसन्निफ़ को गांव में जो अस्तबल नज़र आया वो दरअसल क्या था? दाल, मुसन्निफ़ ने अस्पताल के इनडोर वार्ड को कैसा पाया था? हे, गांव के नंबरदार के बताने पर डॉक्टर साहब का क्या रद्द अमल था? वाओ, डॉक्टर साहब किस हुलिये में मरीज़ों का मुआयना कर रहे थे? सवाल नंबर 2। दर्द ज़ेल अल्फाज अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। खंदा पेशानी, हिकमत, दौरे उफ्तादा, सुरअत, खुशनूदी, फिल बदीहा। सवाल नंबर 3। दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाइए। अलिफ, डाक बंगले की रियायत से याद आ गई। नंबर 1, एक डिस्पेंसरी। नंबर 2, एक इमारत। नंबर 3, एक मस्जिद। नंबर 4, एक गाड़ी। सफ़ा नंबर 92। बे, मुसन्निफ़ की वजह कता में कोई अलामत मौजूद नहीं थी। नंबर 1, डिप्टी कमिश्नर की। नंबर 2, डिप्टी डायरेक्टर की। नंबर 3, डिप्टी सेक्रेटरी की। नंबर 4, डिप्टी कंट्रोलर की। जीम, आँख सब कुछ देखती है। नंबर 1, पत्थर की। नंबर 2, इंसान की। नंबर 3, हैवान की। नंबर 4, फरिश्ते की। दाल जो अस्तबल नज़र आया वो दरअसल था, नंबर एक डाक बंगला, नंबर दो डाक खाना, नंबर तीन अस्पताल, नंबर चार अजायब घर। हे डिस्पेंसरी का आखिरी मुआयना हुआ था नंबर एक 1930 में, नंबर दो 1931 में, नंबर तीन 1932 में, नंबर चार 1933 में। सवाल नंबर चार, दुरुस्त अल्फाज लिखकर खाली जगह पुर कीजिए। अलिफ, डॉक्टर साहब धोती और बनियान पहने कुर्सी पर डैश बैठे थे। बे, मरीज़ अपनी डैश के मुताबिक अपने मर्ज की खुद तशखीस करता था। जीम, गालबन ये नुस्खा डैश के तौर पर इस्तेमाल होता था। दाल, मुझे वहम होने लगता है कि मैं ज़िले डैश का डिप्टी कमिश्नर लग गया हूँ। हे डॉक्टर साहब पूरे डैश बरा से मिसाही फरमा रहे थे। सफ़ा नंबर 97। सवाल नंबर पाँच, दुरुस्त बयान पर सही का निशान लगाइए। अलिफ, चीनी के बने हुए ज़रूफ 150 साल पुराने थे। बे, अस्पताल के वार्ड में डॉक्टर साहब की भैंस बांधी जाती थी। जीम, इंसान की आंख अमूमन तिरछी होती है। दाल, यहाँ पर दवाइयों की जगह तावीज़ों से इलाज किया जाता है। हे, वार्ड में बकरी बांधने का भी बंदोबस्त है। सवाल नंबर छः, गुज़िश्ता कल सुबह से रात तक के वाक़यात लिखिए। सरगर्मियाँ, नंबर एक, अपने इलाके की डिस्पेंसरी या हस्पताल की सेहत व सफाई के बारे में मुतल्लिका महकमे को ख़त लिखिए। नंबर दो, अदमी सहाफ़ती और कानूनी तहरीरों का फ़र्क बयान करें। आप बीती उस तसनीफ़ को कहते हैं जिसमें मुसन्निफ़ ने अपने हालात व वाक़यात खुद कलमबंद किए हों। हिदायात पराए असातज़ा, नंबर एक, तलबा को डायरी या रोज़नामा मच्छा लिखने की तरकीब दीजिए। नंबर दो, रोज़मर्रा ज़िंदगी के तजुर्बात और वाक़यात पर मुश्तमिल अखबारी तराशों का एल्बम तैयार करने की तरकीब दीजिए। नंबर तीन, अदबी सहाफ़ती दफ्तरी और कानूनी तहरीर के फ़र्क को मिसाली नमूनों से वाज़ेह कीजिए। सफ़ा नंबर 98। मिर्ज़ा फ़रहतुल्ला बेग, विलादत 1884, वफ़ात 1947। मिर्ज़ा फ़रहतुल्ला बेग दिल्ली हिंदुस्तान में पैदा हुए। स्कूल और कॉलेज की तालीम वहीं हासिल की। तालीम से फारिग होकर हैदराबाद दिक्कन चले गए। वहां पहले महकमे तालीम में मुलाजिम रहे, फिर महकमे इंतज़ामिया में मुलाजमत अख्तियार कर ली, जहां तरक्की करते करते असिस्टेंट होम सेक्रेटरी के अहदे तक पहुंचे। इनके मजामीन में मौलवी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी और दिल्ली का एक यादगार मुशायरा बहुत मशहूर है। दिल्ली की बामुहावरा ज़ुबान संजीदा ज़राफ़त के अलावा वाक़ निगारी के लिहाज से भी इन मजामीन को उर्दू नसर के शहपारों में शुमार किया जाता है। मिर्ज़ा फ़रहतुल्ला बेग के मजामीन के मजमूए मजामीन फ़रहत के नाम से शाये हो चुके हैं। ओन्हा, सफ़ा नंबर 99। हासिलात तअल्लुम, ये सबक पढ़कर तलबा नंबर एक सबक में मुहावरे तलाश करके लिख सकें, नंबर दो सियाक व सबाक के हवाले से दी हुई इबारत का मफहूम लिख सकें, नंबर तीन आम ज़रूरत के फॉर्म भर सकें, नंबर चार साके और लाहके में तमीज़ कर सकें। तालबे इल्मों को देखो तो उन्हा का ज़ोर सबसे ज़्यादा उन्हीं में पाओगे। साल भर खेल कूद में गुजार दिया, इम्तिहान का ख्याल आया तो उन्हा कर दी ऊन कर दी, यानी कल से पढ़ेंगे। आखिर ये ऊन यहाँ तक खींची कि इम्तिहान आ गया, फेल हुए, इस फेल होने पर भी ऊन कर दी। ये ऊन बहुत ही बामायने होती है। इसके एक मायने तो ये हैं कि बाप जिंदा है, खाने पीने और उड़ाने को मुफ्त मिलता है, अगर वो भी मर गए तो जायदाद मौजूद है। कर्ज़ा देने को साहूकार तैयार हैं, फिर पढ़ लिख कर अपना वक्त क्यों ज़ाया करें। दूसरे मायने ये हैं कि अभी हमारी उम्र ही क्या है, सिर्फ 18 बरस ही की तो है। अगर मिडिल के इम्तिहान में 2-4 दफ़ा फ़ेल हो चुके हैं तो क्या हर्ज है। 30 साल की उम्र तक भी इंटर पास कर लिया तो सिफारिश के बल पर कहीं ना कहीं चिपक ही जाएंगे, या कम से कम विलायत जाने का कर्ज़ा तो ज़रूर मिल जाएगा, और ज़रा कोशिश की तो बाद में माफ़ हो सकेगा। इस फेल होने पर इधर उन्होंने ऊन की और उधर माँ बाप ने ऊन की। सफ़ा नंबर 100। इस सूरत में अब्बा और अम्मा के ऊन का दूसरा मतलब है यानी ये कि बच्चा अभी फेल हुआ है, दिल टूटा हुआ है, ज़रा कुछ कहा तो कहीं ऐसा ना हो कि रो रो कर अपनी जान हलकान कर ले या कहीं जाकर डूब मरे। गर्स इस ऊन ने साहबजादे साहब की तालीम का खात्मा बल फेर कर दिया। घरवाली की ऊन सबसे ख़तरनाक ऊन होती है। किसी मामा पर खफा हो रही है वो बराबर जवाब दिए जाती हैं, ये ऊन करके खामोश हो जाती हैं। लीजिए नौकर शेर हो गए, घर का सारा इंतज़ाम दरहम बरहम। खुदा के अख्तियारात सलब घर की हुकूमत उनसे छीन मामाओं के हाथ में चली गई। कोई चीज़ चोरी हो गई, बेगम साहब ने इधर उधर ढूंढा, कुछ थोड़ा बहुत गुल मचाया, आखिर ऊन करके बैठ गई। अब क्या है, पटारी में से कत्था छालियाँ गायब, खर्च की संदूकची में से रुपये पैसे गायब, संदूकों में से कपड़े गायब, गर्ज रफ्ता रफ्ता सारे घर का सफाया हो गया। मामा ने कोई रकाबी तोड़ डाली, शिकायत हुई, उन्होंने वही अपनी ऊन का इस्तेमाल किया। नतीजा ये हुआ कि थोड़े ही दिनों में अलमारी के पीछे से शीशे और चीनी का इतना टूटा हुआ सा सामान निकला कि खासे कई संदूक भर जाएं। बच्चों ने कोयले से दीवारों पर लकीरें खींची, दरवाज़ों पर पेंसिल से कीड़े मकोड़े बनाए। पहले तो ये थोड़ी बहुत बिगड़े, फिर ऊन करके चुप हो गईं। अब रहे मियाँ तो उनकी ऊन सबसे ज़्यादा तेज़ है। बीवी किसी बात पर बिगड़ी, मियाँ ऊन कहकर बाहर चले गए। सफ़ा नंबर 101। हाँ, ये ज़रूर है कि मियाँ बीवी के ये ऊन बाज़ दफ़ा वो काम कर जाती है जो बड़े बड़े अफलातून इस्लाह कर भी नहीं कर सकते। बीवी को गुस्सा आया, मियाँ ने ऊन कर दी, चलो लड़ाई का खात्मा हुआ। मियाँ किसी बात पर बिगड़े, बीवी ने ऊन कर दी, मियाँ का गुस्सा ठंडा हो गया। अगर ऊन की ऊन के बजाय जवाब दिया जाता तो मियाँ को घर छोड़ना और बीवी को मैके जाना पड़ता। हर मामले की दो ही सूरतें हैं, फतह या शिकस्त, और दोनों सूरतों में ऊन नुकसानदेह साबित होती है। शिकस्त पर जिसने ऊन की उसने गोया शिकस्त को शिकस्त ना समझा, जिसने फतह पर ऊन की उसने गोया अपनी हिम्मत की कदर नहीं की। वो आज नहीं डूबा तो कल डूबेगा। दुनिया में वही लोग कुछ कर सकते हैं जो फतह को फतह और शिकस्त को शिकस्त समझें। अब रहे ऊन वाले जो लापरवाही से शिकस्त और फतह को बराबर समझते हैं, इनका बस खुदा ही मालिक है। दुनिया से अगर मिट ना जाएंगे तो कम से कम जो तियाँ हमेशा ज़रूर खाएंगे, जूतियाँ हमेशा ज़रूर खाएंगे। माखुजाज मजमुआ मिर्ज़ा फरहतुल्ला बेग जिल्द 100 में मज़ामीन, सफ़ा नंबर 102। मश्क सवाल नंबर 1, दर्ज ज़ेल सवालों के जवाब दीजिए। नंबर अलिफ, तालबे इल्मों की ऊन करने की वजूहात तहरीर कीजिए। बे, इस सबक में मुसन्निफ ने कहाँ कहाँ तंज और कहाँ कहाँ मजाह से काम लिया है, 3 मवाक़े तहरीर कीजिए। जीम, इस सबक में अब्बा और अम्मा की ऊन का क्या मतलब है। दाल, मियाँ बीवी की ऊन कैसे फ़ायदेमंद है। सवाल नंबर 2, दर्ज ज़ेल जवाबात में से दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाइए। अलिफ, कर्जा देने को तैयार हैं। नंबर 1 उस्ताद, नंबर 2 माँ बाप, नंबर 3 साहूकार, नंबर 4 दोस्त। बे, अलमारी के पीछे से टूटा सामान निकला, नंबर 1 शीशे और चीनी का, नंबर 2 मिट्टी और शीशे का, नंबर 3 प्लास्टिक और कागज़ का, नंबर 4 स्टील और तांबे का। जी, ऊन कर के चुप होने से नौकर हो जाते हैं। नंबर 1 शेर, नंबर 2 बाअदब, नंबर 3 दलेर, नंबर 4 नाफरमान। दाल, बच्चों ने दीवारों पर लकीरें खींची, नंबर 1 चौक से, नंबर 2 कोयले से, नंबर 3 रंग से, नंबर 4 चूने से। सवाल नंबर 3, सबक में मौजूद मुहावरात तलाश करके उनके मायने तहरीर कीजिए। सफ़ा नंबर 103। सवाल नंबर 4, मंदरजा ज़ेल अल्फाज में से साबके और लाइके अलग अलग करके लिखिए। बदनसीब, बदकिस्मत, दागदार, लाइलाज, पायदार, शुक्रगुजार। सवाल नंबर 5, दर्ज ज़ेल इबारत का मफहूम माहसिया को सबक तहरीर कीजिए। हर मामले की दो ही सूरतें हैं, फतह या शिकस्त, और दोनों सूरतों में ऊन नुकसान देय साबित होती है। शिकस्त पर जिसने ऊन की उसने गोया शिकस्त को शिकस्त ना समझा, जिसने फतेह पर ऊन की उसने गोया अपनी हिम्मत की कदर नहीं की। वो आज नहीं डूबा तो कल डूबेगा। दुनिया में वही लोग कुछ कर सकते हैं जो फतह को फतह और शिकस्त को शिकस्त समझें। सरगर्मियाँ। नंबर एक, तलबा कोई ऐसा दिलचस्प वाक्य क्लास में अपने साथियों को बताएं। नंबर दो, तलबा इस सबक के मुसन्निफ की दीगर मजाहिया तहरीर किसी अखबार या रिसाले से काट कर चार्ट पर अवेजा करें। हिदायात बराए असातिज़ा। नंबर एक, तलबा को दफ्तरी और मजाहिया तहरीर का फ़र्क वाजे करके बताइए। नंबर दो, मुहावरे तलाश करने में बच्चों की मदद कीजिए। सफ़ा नंबर 104, हकीम मोहम्मद सईद, विलादत 1920, वफात 1998। हकीम मोहम्मद सईद दिल्ली में पैदा हुए। आपके वालिद का इंतकाल बचपन ही में हो गया था। 9 साल की उम्र में हाफ़िज़े कुरान हो गए। तकसीमे हिंद के बाद कराची आए और दवा साजी का एक बड़ा मतलब हमदर्द कायम किया। वो उर्दू, फारसी, अरबी और अंग्रेज़ी के बड़े स्कॉलर थे। उन्हें कराची में मतलब से वापसी पर शहीद कर दिया गया। हकीम साहब ने पाकिस्तान में नौनहाल बच्चों का रिसाला शाया किया और तकरीबन 200 से ज़्यादा किताबें भी लिखीं जो कि तिब, अदब, साइंस, सेहत और इस्लामी मालूमात पर मुश्तमिल हैं। उन्होंने बहुत से मुल्कों के सफ़रनामे भी लिखे। वो सुबह सिंध के गवर्नर भी रहे मगर उसका मुआवजा तक ना लिया। हकीम साहब बहुत से एजाजात से नवाजे गए जिनमें 17 इम्तियाज और निशान इम्तियाज शामिल हैं। सफ़ा नंबर 105, कुछ वर्क तारीख से हासिलात तअल्लुम। ये सफ़रनामा पढ़कर तलबा नंबर एक किसी सफ़र का हाल लिख सके, नंबर दो मुतरादिफ़ अल्फाज के जोड़े बना सके, नंबर तीन रोज़मर्रा ज़िंदगी के तजुर्बात, मुशाहिदात या वाक़ियात के हवाले से याददाश्त डायरी लिख सकें, नंबर चार दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ उमदा लब व लहजे में अपना सफ़रनामा बयान कर सकें। नौ नहालों, तुम्हें मालूम है कि ब्रिटिश म्यूज़ियम क्या है? मैं बताता हूँ। ब्रिटिश म्यूज़ियम दुनिया की सबसे मशहूर और अहम लाइब्रेरी है। ये एक आर्ट गैलरी भी है जहाँ मुजस्मे साजी, मुसवरी, नकाशी और ज़रूफ़ साजी के बेहतरीन नमूने मौजूद हैं जो दुनिया भर से जमा करके यहाँ रखे गए हैं। इनमें कदीम यूनान, मिस्र, बाबुल, फ़ारस, हिंदुस्तान, चीन और जापान के नवादरात शामिल हैं। यहाँ तारीख से पहले के ज़माने की यादगार चीज़ों का भी ऐसा कीमती ज़खीरा है जो दुनिया के किसी और म्यूज़ियम में नहीं है। ब्रिटिश म्यूज़ियम में कलमी नुस्खे, पुरानी किताबें, सरकारी दस्तावेज़ात, नक्शे और डाक के टिकट हैं और दुनिया भर में आसर कदीमा की खुदाई से हासिल होने वाले नादिर और नायाब कुतबे, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियाँ और दूसरी चीज़ें हैं जिनसे तारीख के मुख्तलिफ अदवार की तहजीब और तमद्दुन का पता चलता है। ये तहकीक का काम करने वालों के लिए अहम मालूमात फराहम करती हैं। सफ़ा नंबर 102, ब्रिटिश म्यूज़ियम की लाइब्रेरी दुनिया की तीन सबसे बड़ी लाइब्रेरियों में शुमार होती है। दूसरी दो अजीम लाइब्रेरियां पेरिस की लाइब्रेरी बेब्लियोटेक नेशनल और वाशिंगटन की लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस हैं। यहाँ 70 लाख से ज़्यादा किताबें हैं। इनमें ज़्यादातर अंग्रेज़ी ही की किताबें हैं लेकिन दुनिया की दूसरी ज़ुबानों की किताबें भी यहाँ हैं। ब्रिटिश म्यूज़ियम की लाइब्रेरी के तीन बड़े हिस्से हैं। एक हिस्सा मतबूआ यानी छुपी हुई किताबों का है, उसमें किताबें, दस्तावेज़ात, नक्शे और डाक के टिकट हैं। दूसरा हिस्सा मखतूतात यानी कलमी नुस्खों का है। यहाँ 3री सदी कबल मसीह से अब तक के यूरोपियन मखतूतात हैं। तीसरा हिस्सा मराकिश से लेकर जापान तक के मखतूतों और छुपी हुई किताबों का है। अखबारात की अलग लाइब्रेरी है। ब्रिटिश म्यूज़ियम लाइब्रेरी के मखतूतात के हिस्से में यूनान के आइन के बारे में अरस्तू की अपने हाथ से लिखी हुई एक तहरीर भी मौजूद है। नौनहालों, तुम्हें जानना चाहिए कि अलबैरूनी और इब्नुल हैसम कौन थे। अलबैरूनी का नाम अबू रेहान बिन अहमद था। इस्लामी दुनिया के एक अजीम साइंसदान थे। वो रियाजी, फलकियात, मादनियात और दवाओं की खासियत के माहिर, सियाह और आसर कदीमा के आलिम थे। अलबैरूनी ने अपनी ज़िंदगी के 50 साल इल्म हासिल करने और किताबें लिखने में गुजार दिए। उनको इन किताबों पर शाही दरबार से बड़े इनामात भी पेश किए गए लेकिन उन्होंने कोई इनाम कबूल नहीं किया। वो शाही इनाम को अपने इल्मी मुकाम اور مرتبے کے خلاف سمجھتے تھے اور کسی انعام کی پرواہ کیے بغیر لکھنے میں لگے رہتے تھے۔ صفحہ نمبر 108۔ البیرونی نے 100 کتابیں لکھی ہیں، ان میں جیومیٹری، ریاضی، جغرافیائے زمین کے علم، فلکیات اور دواؤں کے علم پر کتابیں شامل ہیں۔ البیرونی کے اہم سائنسی کارناموں میں طول بلد اور عرض البلد کا معلوم کرنا اور دنیا میں پہلی بار قدرتی چشموں کے بارے میں یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ زمین کے نیچے پانی میں برقی کیمیائی عمل کے زور سے ابھرتے ہیں۔ انہوں نے دریا اور زمین کی گہرائی معلوم کرنے کا طریقہ بھی بتایا اور معدنیات کے علم میں بڑا اضافہ کیا۔ انہوں نے بہت سی جڑی بوٹیوں کی خصوصیات اور ان کے فائدے اور مختلف زبانوں میں ان کے نام بھی بتائے۔ ہیت ایسٹرانومی اور ریاضی کے مطالعے کے لیے البیرونی نے ہندوستان کا سفر کیا اور وہاں کے رسم و رواج اور رہن سہن کے طریقوں کا غور سے مطالعہ کیا۔ پھر غزنہ واپس آ کر کتاب الہند کے نام سے ایک کتاب لکھی اور وہ ساری معلومات جو انہیں ہندوستان میں حاصل ہوئی تھی اس میں جمع کر دی۔ ہندوستان کے عالم البیرونی سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہیں علم کا دریا کہنے لگے۔ البیرونی کا انتقال 148 میں ہوا۔ کتاب کا پارٹ نمبر 6 یہاں مکمل ہوتا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 7 میں سنیں۔